ठीक है बच्चों, ओके ई कॉमर्स की जो 2013-14 सन में ट्रेंड्स थे कि प्रकृति क्या थी, प्रवृत्ति क्या थी, किस किस तरफ जा रहा है, वो यहाँ दिखाया है कि सोशल, लोकल और मोबाइल, सामाजिक, स्थानीय और मोबाइल ई कॉमर्स चल रहा था। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो पुराना डेस्कटॉप कंप्यूटर होता था, पीसी कंप्यूटर, उसके बजाय अब मोबाइल प्लेटफॉर्म आ गया। ये मोबाइल है, सब इस पे लिखा हुआ है, इसकी मदद से करते हैं, तो मोबाइल प्लेटफॉर्म आ गया। क्लाउड कंप्यूटिंग जो आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है, उसकी मदद से ई कॉमर्स होने लगा। तीसरी बात, चौथी बात, बिग डेटा आपने फिर पहले सेमेस्टर में पढ़ा है, तो अब ई कॉमर्स में बिग डेटा का इस्तेमाल होने लगा। और जो किताबें हैं, जो आप छपी हुई किताबें देखते हैं, उसके बजाय ई किताबों, ई बुक्स का प्रचलन बढ़ने लगा। और जो जो उपभोक्ता है, वो अपना कंटेंट, माने अपनी सामग्री, अपना विषय सामग्री खुद बना रहा है। जैसे आप फेसबुक पर जाते हैं तो आप अपने बारे में कुछ कुछ लिखते रहते हैं, जिस भी भाषा में चाहे लिखें, तो आप अपना कंटेंट खुद क्रिएट कर रहे हैं। ये नई प्रवृत्तियाँ हमें ई कॉमर्स में देखने को मिली हैं। जो शुरू के, अब आइए देखें कि ई कॉमर्स की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो जो शुरू के 17 साल थे, वो बस शुरुआत थे, लेकिन उस समय तेज़ी से विकास तकनीक में हो रहा था, तकनीक बहुत तेज़ी से विकसित हो रही थी। इसके बाद जो तकनीक है वो बहुत तेज़ी से विकसित होती चली गई, और इसमें हमने क्या देखा कि बिज़नेस में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आए, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि जो चल रहा था उसको तोड़ दिया गया, उसका विध्वंस कर दिया। डिसरप्शन माने तोड़फोड़, विध्वंस, जो चल रहा था उसको हटा दिया, कुछ दूसरा उसकी जगह लगने लगा। तो ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हो गई। जैसे आपने बचपन में बहुत देखा होगा कि पीसीओ हुआ करते थे, अब तो पीसीओ नहीं होते, हर आदमी की जेब में पीसीओ है, हर आदमी की जेब में फ़ोन है, तो पीसीओ ख़त्म हो गया। तो बहुत सारे बिजनेसेस धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और नए अवसर हमें मिलने लगे। ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए अवसर हमें मिलने लगे। हम लोगों ने क्या देखा, क्या हुआ ई कॉमर्स, क्या ई कॉमर्स है, कल भी हमने आपको कुछ बताया था। तो यहाँ बस इतनी बात बताई जा रही है कि जब भी इंटरनेट या वेब कॉमर्स के लिए इस्तेमाल होगा, ट्रांजैक्ट बिजनेस, बिजनेस को करने के लिए इस्तेमाल होगा, तो उसको ई कॉमर्स कहते हैं। और औपचारिक रूप से देखें तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली, यानी अंकों में, जब हम व्यावसायिक व्यवहार, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करेंगे, जो किसी संगठन से दूसरे संगठन के बीच में हो सकते हैं या संगठन से उपभोक्ता के बीच में हो सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है। ई बिजनेस क्या है, ये मैंने आपको कल बताया था, पूरा हम लोगों ने समझा था। बिजनेस, बिजनेस के अंदर मतलब व्यापार, व्यापार के अंदर वाणिज्य और उद्योग। और जब भी हम इलेक्ट्रॉनिकली व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक व्यापार या व्यवसाय कहा जाएगा। क्यों पढ़ें हम ई कॉमर्स, कल इसकी बात हुई थी, ई कॉमर्स हम क्यों पढ़ें, और उसी में है कि क्योंकि ई कॉमर्स तकनीक एकदम अलग है। जो पहले से कॉमर्स होती थी वो, जो पहले वाणिज्य होता था वो, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है वो, इन दोनों की तकनीकें एकदम अलग अलग हैं। तो हमें समझना होगा कि क्या है फ़र्क, क्योंकि ई कॉमर्स बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, ये पुराने वाली कॉमर्स को हटा दे रहा है, नई कॉमर्स आ जा रही है। तो अगर नई कॉमर्स नहीं पता होगी तो फिर हम आसानी से नहीं चल पाएंगे। मैंने आपको कल अपने भाई का उदाहरण देकर भी बताया था कि जिसको अस्पताल में पेमेंट्स करने थे और वो नहीं कर पा रहा था। जैसे अभी मुझे इतवार को लखनऊ जाना है, तो मुझे बस का टिकट कराना था। मैंने अभी अपने घर से, जहाँ से मैं आता हूँ, और क्लासरूम तक आते आते में ही टिकट बुक करा दिया। क्या आपको पता है कैसे टिकट बुक होता है? बस का टिकट नहीं? अच्छा, आप लोगों के पास किसी के पास ये स्मार्टफोन है? किसी के हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, बहुत लोगों के पास है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस डाउनलोड किए हुए हैं कि नहीं किए? एप्लीकेशंस डाउनलोड किए हैं। तो पेटीएम है? पेटीएम है, तो पेटीएम में तो बस है, पेटीएम में बस है। पेटीएम अभी खोलिए, नीचे बस मिल जाएगा, उसी से तो मैंने बुक किया। ठीक है, पेटीएम बस है, पेटीएम में बस है। और बाकी रेड बस, RED रेड बस के नाम से एक पूरा एप्लीकेशन आता है जो बस को भी, बस की बुकिंग कराता है। वैसे उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं, पेटीएम में हो जाता है, मैंने भी पेटीएम से किया। ठीक है, तो ये अगर हमें नहीं मालूम होगा तो फिर हमारे लिए व्यवहार करना मुश्किल हो पाएगा। कैसे कैसे मालूम हो कौन सी बस जा रही है, कितने बजे जा रही है, ये सब जीना मुश्किल हो जाएगा, मतलब जीना आसान हो जाएगा अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पता है तो। ये बात समझ रहे हैं? या अभी 3 दिन पहले हमारे पिताजी बोले कि हम दंगल फिल्म देखेंगे, तो हमने तुरंत अखबार पढ़ते पढ़ते ही सुबह चाय पीते पीते ही तुरंत खोला वो बुक माई शो मालूम है किसको? मार हाथ उठाइए बेटा, ऐसे नहीं, हमको पता तो चले। बुक माई शो आपको पता? अच्छा, बुक माई शो भी एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए स्मार्टफोन में, तो उसे कोई भी सिनेमा बुक किया जा सकता है पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी सिनेमा बुक किया जा सकता है। तो तुरंत बुक माई शो से देखा कौन से दिन कौन से शो में कितने बजे से टिकट्स अवेलेबल है, उसको टिकट बुक करा दिया। तो इसलिए ई कॉमर्स पढ़ना ज़रूरी है। ई कॉमर्स ब्रिंग्स फंडामेंटल चेंजेस टू कॉमर्स, ये मैंने आपको बता दिया कि ई कॉमर्स जो है वो मूलभूत बदलाव कॉमर्स में ला रहा है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, ये हमें करना ही पड़ेगा। जो पारंपरिक वाणिज्य है, ट्रेडिशनल कॉमर्स, उसमें क्या होता था, उसकी क्या विशेषताएं थीं? तो पहली बात है, उपभोक्ता एक पैसिव टारगेट होता था। उपभोक्ता एक पैसिव का मतलब निष्क्रिय लक्ष्य, निष्क्रिय लक्ष्य जैसा हो गया। निष्क्रिय लक्ष्य का मतलब कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, आपको जो बता दिया वो बता दिया, लेना हो ले नहीं आगे बढ़ो। अब क्या है, अब लेना हो ले आगे बढ़ो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको तुरंत पता चल जाएगा कि यही सामान और कहाँ क्या भाव पर मिल रहा है, तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, अब तो ऐसे एप्लीकेशंस आ गए जो तुरंत बताते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट है उसको ऐसे स्कैन कर लीजिए उसका प्रोडक्ट कोड, तो वही सामान, ठीक वही सामान, वही मॉडल किस किस दुकान पर कितने कितने रुपए का मिल रहा है सब पता चलने लगता है। ठीक है, तो अब उपभोक्ता निष्क्रिय लक्ष्य नहीं है, सक्रिय है। अब यह विक्रेता का बाजार नहीं है बल्कि क्रेता का बाजार है। क्रेता सजग है, क्रेता को मालूम है। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है, जो चीज़ समझ नहीं है हाथ उठाकर प्लीज पूछिएगा। दूसरा, मास मार्केटिंग ड्रिवन। पहले क्या होता था कि वृहत स्तर पर विपणन प्रयत्न करने पड़ते थे, मास मार्केटिंग। अब हम लोग, अब जो वो उत्पादन करता है, उत्पादक है, उसको बहुत ज़्यादा विपणन के उस तरह से प्रयत्न नहीं करने पड़ते, इंटरनेट के माध्यम से उसकी चीज़ें अपने आप जगह जगह पहुँच जाती हैं। तीसरा है सेल्स फोर्स ड्रिवन, माने विक्रय अभिकर्ता पहले बाजार में घूमते रहते थे, वही सामानों को बेच पाते थे। अगर आपको कभी याद हो, बहुत मे बी 10 साल पहले 15 साल पहले दरवाज़ा दरवाज़ा खटखटा के लोग आते थे सामान बेचने, अब तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस तरह के विक्रय अभिकर्ता अब ख़त्म हो गए, अब उसकी ज़रूरत नहीं रह गई। क्यों नहीं रह गई? क्योंकि आपके पास ईमेल है, व्हाट्सएप है, SMSs हैं, इंटरनेट है, आप उसकी मदद से चीज़ों को बेच पाते हैं, और ये वाला जो माध्यम है बेचने का ये बहुत महंगा हो गया। ये बात समझ रहे हैं? इसके बाद पहले दाम फिक्स, दाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अब क्या है, हर चीज़ में मोल तोल है, मोल भाव किया जा सकता है, दाम में बदलाव आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वही सामान दूसरा दुकानदार किसी और भाव बेच रहा है। और आखिर में पहले जो सूचना थी वो उपलब्ध ही नहीं थी, और उपलब्ध भी थी तो विषम विषमता थी, आप कुछ बता रहे हैं, आप कुछ बता रहे हैं, आप कुछ और बता रहे हैं, सही क्या है पता ही नहीं। क्या आज ये पता लगाना मुश्किल है कि सही बात क्या है? आज ये पता लगाना मुश्किल नहीं है। बहुत सारे हमारे मित्र व्हाट्सएप पे इधर उधर की बातें भेजते रहते थे, तो हम क्या करते थे, उसमें भरोसा नहीं किया, तुरंत इंटरनेट पे गए ढूंढा ढांडा कि सही क्या है, सही पता लग जाएगा। जैसे 2000 का नया नोट आया तो लोगों ने बताया चिप है, ठीक है, तुरंत इंटरनेट पे गए ढूंढ लिया, पता लग गया। तो अब सूचना में विषमता नहीं रह गई, सूचना सबको हर तरह की जो भी जैसा चाहे मिल पाती है। इतनी बात समझ रहे हैं? अब 8 विशिष्ट बातें जो ई कॉमर्स तकनीक की 8 विशिष्ट बातें हैं, ये उसकी बात हो रही है, 8 यूनिक फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी। 1, सार्वभौमिक, यूबिक्विटी का मतलब है सार्वभौमिक, लिख लीजिए सार्वभौमिक, ठीक है, हर जगह उपलब्ध, जहां जाइएगा वहां ई कॉमर्स हो जाएगा। अभी आपको पता है ना, कार में बैठे बैठे टिकट बुक कर दिया, हर जगह सार्वभौमिक, यूबिक्विटी। दूसरा है ग्लोबल रीच, यानी आप कहीं भी बैठे हो आप पूरे विश्व में पहुंच सकते हैं। सो ग्लोबल रीच का मतलब हुआ वैश्विक उपलब्धता, वैश्विक उपलब्धता, ठीक है। तीसरा हुआ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक, सॉरी सर्वमान्य मानक, यूनिवर्सल माने सर्वमान्य मानक, सर्वमान्य मानक। चौथी बात है सूचना समृद्ध, सूचना समृद्ध, इंफॉर्मेशन रिचनेस। पांचवी बात है इंटरैक्टिव, ठीक है, पांचवी बात है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव की हिंदी क्या भी ढूंढते हैं, ठीक है, अंतर नहीं, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर बात करिए, ठीक है, आपसी वार्तालाप देख सकते हैं, इंटरैक्टिव कुछ और है अभी ढूंढेंगे, ठीक है, अभी आप इंटरैक्टिव लिख लीजिए। फिर है सूचना सघनता, डेंसिटी माने सघनता, सूचना सघनता। ठीक है, सातवां है निजीकरण, पर्सनलाइजेशन, निजीकरण। निजीकरण या व्यक्तिकरण, व्यक्तिकरण। और आठवां है सामाजिक तकनीक, सोशल टेक्नोलॉजी, सामाजिक तकनीक, ठीक है, आठों पॉइंट हो गया। अच्छा, एक एक बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पढ़ो, सार्वभौमिक, माने हर जगह मौजूद है, ये तो समझ में आता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जिससे पूछा जाए वो बताए, एक एक करके बात कीजिए, और आपको खुद बात करने का कोई मन हो तो हाथ उठाइए, तब तो पता लगे कि कौन बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। वैश्विक उपलब्धता माने आप यहाँ हैं, यहाँ बैठे बैठे कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इलाहाबाद में ही नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं हैं, भारत में ही नहीं हैं, बल्कि पूरे विश्व में आप उपलब्ध हैं। इंटरनेट पे है, इंटरनेट पे कोई भी कहीं से क्लिक करेगा तुरंत पता चल जाएगा कहाँ क्या मिल रहा है, ठीक है। बहुत साल पहले वो हवाई जहाज़ में यात्रा करते समय कान में लगाने के लिए प्लग्स आते हैं, ईयर प्लग्स, वो हम खरीदना चाहते थे, कहीं मिल ही नहीं रहे थे, इंटरनेट पर ढूंढा तो बैंगलोर की एक कोई दुकान ईयर प्लग्स बेच रही थी बहुत साल पहले, तो वहाँ से मंगा लिए, 12 ठवा गए, मिल गया, पता चल गया, तो उसके लिए तो बिक्री हो गई, बैंगलोर में बैठे बैठे इलाहाबाद बेच लिया। फिर क्या है तीसरा,
सर्वमान्य मानक,
सर्वमान्य मानक माने अब कौन सा मानक ऐसा हो जो माना जाए और जिसकी मदद से हम काम कर पाए, वह पता चल जा रहा है, सबको सब मालूम हो जा रहा है कि कौन क्या चीज़ का क्या मतलब है, और उसके हिसाब से वो कोई काम कर पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जब हम विद्यार्थी थे आपकी तरह, तो हम लोगों को पता ही नहीं चल पाती थी। अब तो इंटरनेट पे जाओ, एक सेकंड के अंदर पता चल जाता है कि क्या है, कैसे है, किसकी क्या सच्चाई है। तो जो मानक है उनकी मान्यता बढ़ती चली जा रही है। मानक क्या है? जैसे ट्यूबलाइट है, तो कोई भी कंपनी ट्यूबलाइट खरीदिए, लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? मानक है ये, सर्वमान्य है, हर ट्यूबलाइट बनाने वाला वैसे ही बनाएगा। या रिफिल कोई भी खरीद लाइए, पेन में लग जाएगी कि नहीं? आमतौर से लग जाएगी, अगर कोई बात खास किस्म का पेन नहीं है तो। या इसमें सेल लग रहा है, बैटरी, वो कोई भी खरीद लाइए कंपनी की, लग जाएगी। तो दिस इज, ये इसको कहते हैं सर्वमान्य मानक। फिर चौथी बात क्या है?
सूचना
समृद्धता, यानी हर एक के पास खूब सूचना है, जितनी चाहे ले लो, जो चाहे कर लो, खूब खूब सूचना है, पर्याप्त मात्रा में जो चाहिए जान लीजिए, ठीक है। तो कल जो है कोई बच्चा कह रहा था गांव में बिजली नहीं है तो क्या है, यही बच्चा था, तो आप थे, अच्छा, तो आप जब चाहेंगे जितना जानना चाहेंगे उतना आपको मिल जाएगा, सूचना का कोई अभाव है नहीं। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि जब मैं एमकॉम कर रहा था तो किताबें खरीदनी पड़ती थी, और बिना किताबें खरीदे गुजारा नहीं था, और कोई तरीका ही नहीं था जानने का कुछ। लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी भी में भी कुछ होता था, कुछ नहीं होता था। आज तो मान लीजिए आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो भी डेटा पैक बहुत सस्ता आने लगा, साइबर कैफे चले जाइए, तुरंत सर्च कीजिए, जो चाहिए ढूंढ लीजिए, सब मिल जाता है। तो अब सूचना बहुत समृद्ध हो गई है।
इंटरैक्टिविटी
माने आप कुछ करेंगे तो दूसरा, दूसरी तरफ से भी कुछ जवाब आएगा, ठीक है। इंटरैक्टिव है माने हम कुछ करेंगे फिर कुछ होगा, फिर हम कुछ करेंगे फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा, तो ये इंटरैक्टिविटी इसको कहते हैं, ठीक है। आपको कुछ सामान खरीदना है तो आप ढूंढ लीजिए, तो उससे जुड़े हुए सामान और बहुत सारे दिखाने लगेगा, हर एक का दाम दिखाने लगेगा। दिस ऑल इज नोन एज इंटरैक्टिविटी। फिर है सूचना सघनता, माने आप पहले तो सूचना का अभाव था, अब यह है कि बहुत सूचना उपलब्ध है और भारी मात्रा में, एक ही चीज़ के बारे में और जानिए और जानिए और ज़्यादा जानिए, तो बहुत ज़्यादा सूचनाएं आपको मिल जा रही हैं। फिर है व्यक्तिकरण, यानी हम किसी भी चीज़ को यह देख सकते हैं कि हमें कैसा सुविधाजनक लगेगा, जैसा हमें सुविधाजनक लगे हम वैसा करा लेंगे। जैसे अब सिनेमा की टिकट की ही अगर हम बात करें, तो आप कौन सी सीट पर बैठना पसंद करेंगे आप चुन सकते हैं। बस अभी हमने बुक कराई है तो आपको सुनकर मज़ा आएगा या पता नहीं मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। मैं सिनेमा भी देखता हूँ तो दो टिकट खरीदता हूँ, बस में भी जाता हूँ तो दो टिकट खरीदता हूँ, एक नहीं खरीदता। अब वो 2x2 की बस होती है, दो सीट इधर दो सीट उधर, ठीक है, तो दो टिकट खरीद लिया। अब बगल में कोई बैठेगा नहीं आके, कि बैठेगा? वो तो टिकट बिका हुआ है, उस पर कौन बैठेगा? बैग जी बैठेंगे बस, ठीक है, हमारा बैग रखा हुआ है। अब बगल में कैसा भी व्यक्ति आकर बैठ रहा है, कैसा कपड़ा पहना है, क्या है, साफ़ सुथरा है भी कि नहीं, नहाया है कि नहीं नहाया है, क्या है, उस सबसे निजात मिल गई कि नहीं। तो आपको सब पर्सनलाइज, आप जैसा चाहें वैसा कर लें। सिनेमा भी जाते हैं दो टिकट खरीदते हैं, सेंटर कॉर्नर दो टिकट, तो एक तो इधर कोई बैठेगा ही नहीं, रास्ता है, और एक टिकट ये और ख़रीदा हुआ, इधर भी कोई नहीं बैठेगा, बस आराम से अकेले बैठ के देख रहे हैं, हो गया। या पत्नी गई तो दो तीन टिकट खरीद लिया, एक इधर वाला खाली, हो गया। तो जैसे आप चाहें कस्टमाइज़ कर लें, जो भी चाहें आप अपने ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे अब हाथ हमारा जो है वो थोड़ा लंबा है, लंबे आदमी है तो थोड़ा हाथ लंबा है, तो जो आम तौर से कमीज़ खरीदते हैं वो छोटी पड़ जाती है। अभी जो कमीज़ पहने होती है छोटी, आस्ती निकल ही नहीं पाएगी। तो लॉन्ग स्लीव्स का ऑप्शन है कस्टमाइजेशन, आप जाइए माइंत्रा पे जाइए या किसी भी वेबसाइट पे जाइए, तो लॉन्ग स्लीव्स का ऑप्शन देता है कि लंबी वाली आस्तीन चाहिए तो लंबी वाली आस्तीन की कमीज मिल जाएगी, पर्सनलाइजेशन, ठीक है। और अगला क्या है? सोशल टेक्नोलॉजी, सामाजिक तकनीक आ गई, जैसे फेसबुक आ गया, क्विकर ट्विटर आ गया, ब्लॉग्स आ गए, इन सब के माध्यम से आप बहुत सारा काम कर ले जाते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप कर ले जाते हैं। अब इसके बाद आइए देखिए कि ई कॉमर्स किस कितने प्रकार का है, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स के प्रकार। ई कॉमर्स के प्रकार, ठीक है। तो पहला है व्यवसाय से उपभोक्ता, बी टू सी, इसको हिंदी में भी बी टू सी ही लिखिए, ठीक है, बी टू सी ही के नाम से इसको जाना जाता है। बी टू सी का क्या मतलब हुआ? व्यवसाय से उपभोक्ता तक, ठीक है। तो जब भी कोई व्यवसाय कोई भी उत्पाद या सेवा उपभोक्ता को देगा तो उसको कहेंगे बी टू सी, ठीक। इसी तरह से बी टू बी, जब कोई व्यवसाय दूसरे व्यवसाय को देगा संगठन से संगठन तो उसको कहेंगे बिजनेस टू बिजनेस, ठीक। ये बात समझ रहे हैं? जो आपको ये जनरल मर्चेंट बिस्किट दे रहा है तो ये बिस्किट कहाँ से लाया? होलसेलर से लाया। होलसेलर कहाँ से लाया? प्रोड्यूसर से लाया, ठीक है। थोक व्यापारी उत्पादक से, उत्पादक से थोक व्यापारी, थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी। तो ये जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है इसको कहेंगे व्यवसाय से व्यवसाय, बी टू बी। तीसरा हुआ कंज्यूमर टू कंज्यूमर, माने मैं कुछ बेचना चाहता हूँ किसी दूसरे उपभोक्ता को, ठीक है, तो इसको कहेंगे कंज्यूमर टू कंज्यूमर या सी टू सी। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? ओएलएक्स बेच दे, जो मर्जी आए बेच दीजिए, ठीक है, ईबे ओएलएक्स। तो आप कुछ भी बेचना चाहते हैं बेच दीजिए, इसको कहते हैं सी टू सी। फिर चौथा है सोशल ई कॉमर्स, यानी आपने कुछ बनाया, आपने अपनी चीज़ों को फेसबुक के माध्यम से बेचना शुरू कर दिया, तो दिस इज नोन एज सोशल, सामाजिक ई विपणन या वाणिज्य। फिर है मोबाइल ई कॉमर्स, यानी मोबाइल को कहेंगे क्या कहेंगे? चल, मोबाइल माने चल, ई मोबाइल माने अचल, ठीक है। तो चल ई कॉमर्स में क्या हुआ कि जब आप चलते चलते कोई व्यापार व्यवहार करते रहते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि करते करते तुरंत टिकट बुक कर दिया, तो ये ई मोबाइल ई कॉमर्स हो गया, एम कॉमर्स इसे कहते हैं। फिर एक नई चीज़ बच्चों आ गई, अब लोकल ई कॉमर्स, स्थानीय ई कॉमर्स, स्थानीय लोकल, ठीक है। लोकल में क्या हुआ कि जब भी आप किसी एक जगह पहुँचे तो वो ई कॉमर्स बस उसी जगह हो रहा है, ठीक है। ड्यूसिस वो होम डिलीवरी करता खाने की, तो वो लोकल ई कॉमर्स हो गया, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आप कहीं गए तो जो आपका फ़ोन है वो दूसरी जगह गया, तो वहाँ सर्विस प्रोवाइडर को पता चल गया कि आप इस फ़ोन में इस इलाके में आ गए, तो वहाँ उस वाले मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली में बॉम्बे में ये सब खूब होता है, आप जब जाइएगा तो वो वहाँ के मैसेजेस देना शुरू करेगा। आप बहुत सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड करिए तो वो आपसे कहता है कि आपकी लोकेशन को हमें पहचानने की अनुमति दीजिए, पूछता है ना कि आप लोकेशन आइडेंटिफाई कर लें। तो क्यों कर लें? क्योंकि वो लोकेशन देख के, आपकी स्थिति देख के कि आप कहाँ हैं, भौगोलिक स्थिति देख के आपको सूचनाएँ देना शुरू करेगा। जैसे bookmyshow.com पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, आप जैसे ही दिल्ली पहुँचेंगे, कनॉट प्लेस पहुँचेंगे, कहीं भी पहुँचेंगे, तो वो वहाँ जितना शो हो रहा होगा सबकी सूचनाएँ आपको देना शुरू कर देगा, ठीक है। इसको कहते हैं लोकल ई कॉमर्स। ये दो चार्ट है जो दिखा रहे हैं कि ई कॉमर्स कैसे बढ़ा है, रोज अखबारों में खूब छप रहा है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। और फिर ये जो मोबाइल प्लेटफॉर्म है, चल प्लेटफॉर्म है, ये क्या हुआ? मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट इन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सबसे ताज़ा आधुनिक विकास है वो यही मोबाइल टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से हम कुछ भी कर पा रहे हैं। दूसरा, ये क्या करता है? एनेबल्स एक्सेस टू द इंटरनेट वाया वायरलेस नेटवर्क और सेलफोन सर्विसेज। ये हमें इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा दे देता है, किसकी मदद से? बिना तार के। समस्या ये थी कि तार जहाँ हो तो तार जोड़ें तब तो आगे बात बने, नहीं तो काम ही ना बने। तो अब मोबाइल की वजह से बिना तार जोड़े हम ये काम कर पाते हैं। मोबाइल जो उपकरण हैं उसमें क्या क्या शामिल होता है? टैबलेट्स, देखी हैं टैबलेट, टैबलेट, स्मार्टफोन आप सबकी जेब में पड़ा हुआ है, और तीसरा बहुत हल्के लैपटॉप्स। ये जो हमारा लैपटॉप लगा है ये हल्का नहीं है, भारी लैपटॉप है। बहुत हल्के लैपटॉप्स को भी हम मोबाइल डिवाइस कहते हैं। माने मोबाइल डिवाइस उपकरण का क्या मतलब हुआ? जिसको लेकर आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, ठीक है। अब ये तीन सवाल हैं, ठीक है, इन तीन सवालों को नोट कर लीजिए, मैं लिखवाता हूँ एप्लीकेशंस के, लिख लीजिए एप्लीकेशंस के लाभ तथा हानियां क्या हैं, यदि इसकी तुलना वेबसाइट से की जाए। ठीक है, बल्कि इसको काट दीजिए, फिर से लिखवाते हैं, काट दीजिए पूरा काट दीजिए, दोबारा लिखवाते हैं सवाल, ठीक से लिखवा देते हैं। ठीक है, मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए वेबसाइट्स की तुलना में एप्लीकेशंस के क्या लाभ अथवा हानियां हैं। ठीक है, एक सवाल ये हुआ, और दूसरा सवाल है कंटेंट बनाने वालों या स्वामियों के लिए एप्लीकेशंस के क्या लाभ हैं। ठीक है, तीसरा सवाल, क्या एप्लीकेशंस वेब को अप्रासंगिक कर देंगे क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, ये तीन सवाल हो गए, इनके बारे में सोचिएगा, समझिएगा, और हो सकता है अगली कक्षा में हम इसकी चर्चा करें, तैयार करके आइएगा। ठीक है, अब आइए देखें कि ई कॉमर्स का विकास कैसे हुआ। ई कॉमर्स में जो सबसे पहली बात हुई वो हुई बैक्स्टर हेल्थ केयर में। चलिए, ये तो मैं अपलोड कर ही दूंगा, आप नोट कर सकते हैं। बैक्स्टर हेल्थ केयर एक कंपनी है अमेरिका की, इसने 1970 के दशक में अपने ग्राहकों से टेलीफोन पर ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। माने आप फ़ोन लगाइए, टेलीफोन नंबर लगाइए, तो वॉइस रिकॉर्डिंग पे आपका ऑर्डर रिकॉर्ड हो जाता था। फिर क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, माने हम अपना डेटा इलेक्ट्रॉनिकली आपको भेज सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप से आप कंटेंट भेजते, वो कॉन्टैक्ट भेजते हैं कि उनका नंबर हमको दे देना, तो व्हाट्सएप से भेज देते हैं, वो तुरंत आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जुड़ जाता है, न टाइप करना है न लिखना है, और सब गलती की कोई संभावना नहीं। तो ये इसको कहते हैं EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। फिर आया एक फ्रेंच मिनीटेल, एक कंपनी थी, उसने 1980 में वीडियो टेक्स्ट सिस्टम इंस्टॉल किए, शुरू किए, जहाँ पुराने टेलीफोन की मदद से जो शब्द थे वो जाने लगे। ठीक है, उसको कहा वीडियो टेक्स्ट। और फिर अगली बात जो हमारे सामने आई वो ये कि इन सब में इंटरनेट जैसा कुछ भी नहीं था, इन सब में इंटरनेट जैसी कोई भी सुविधा नहीं थी। आगे क्या आया 1995, और अब वहाँ पर हमने ई कॉमर्स देखा कि शुरू हुआ, और पहली चीज़ क्या हम लोगों ने बिकती देखी, इंटरनेट ई कॉमर्स में होते देखी, वो देखी विज्ञापनों के बैनर बिकते हुए देखे, फर्स्ट सेल्स ऑफ बैनर एडवर्टीजमेंट, बैनर एडवर्टीजमेंट का बैनर, उसकी सेल हम लोगों ने देखिए फर्स्ट सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट बैनर्स, ठीक है। पहले ये सर्च इंजन्स नहीं होते थे, डायरेक्टरीज होती थी, याहू, लाइकॉस, बहुत सारी डायरेक्टरीज होती थी, रिडिफ, और उन डायरेक्टरीज पर जो भी आप ढूंढें, जो भी वेबसाइट ढूंढना चाहें, तो उससे रिलेटेड आपको विज्ञापन दिखने लगते थे। उसको दोस्तों कहते थे बैनर एडवर्टीजमेंट। फिर हम लोगों ने आगे एक चीज़ देखी कि ई कॉमर्स सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकसित होने लगा अमेरिका में भी और पूरे विश्व में भी। अब 1995 से 2000 में मुख्य वो हुआ इनोवेशन। इनोवेशन को क्या कहेंगे? हाथ उठाकर बताइए। उद्भव, ठीक है। इवोल्यूशन होता है ऐसे, उद्भव तो जो 1995 से 2000 के बीच में सब नवाचार हुआ, उसमें क्या क्या बातें आईं? एक हुआ कि जो प्रमुख अवधारणाएं हैं वो विकसित हुई, की कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए, ठीक है। की कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब हुआ? की कॉन्सेप्ट्स का मतलब हुआ, हाँ पंडित जी इसको बंद कर लीजिए, अब आने वाला क्लास नहीं लेंगे, इसको बंद करके रख लीजिए। की कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब हुआ कि पेमेंट गेटवे आने लगे, भुगतान कैसे हो ये समझ में आने लगा। दूसरा, शॉपिंग कार्ट की अवधारणा आई, लोग सामान इकट्ठा करते जा रहे हैं, विश लिस्ट बना दिया। अगर आप लोगों ने कुछ ख़रीदा हो कभी ऑनलाइन इस तरह से, तो आपको कुछ मालूम होगा, ठीक है। और डोर डिलीवरी के कॉन्सेप्ट्स आए, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स ई कॉमर्स में आने लगे। हालांकि जो एक बड़ी भारी बात हमारे सामने आई वो ये थी कि ऐसा लगने लगा कि पूरी दुनिया बदल जाएगी, ठीक है, आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। यूफोरिक विजन हम लोगों को लगा कि ऐसा हो जाएगा, और ऐसा लगने लगा कि ये फ्रिक्शनलेस, माने कहीं कोई घर्षण नहीं होगा, सहज व्यापार हो पाएगा। घर्षण का क्या मतलब है कि अब आप कहीं गए, दुकानदार क्या खड़े, वो सुन ही नहीं रहा है। अब आप उससे कह रहे हैं कि भाई बिस्किट दे दो, तो पूछा कौन सा बिस्किट, तो आपने कुछ बताया, तो वो कुछ दिखाया, वो आपको पसंद आया, आपने कहा अच्छा पार्ले जी दे दो, आप कह रहे 2 रुपये वाला दे दो, वो कहता नहीं यहाँ पर 10 रुपये का पैकेट है। तो कोई भी व्यवहार करना, ट्रांजैक्शन करना कितना मुश्किल है, ये बात समझ रहे हैं ना? आप अपनी पसंद बता पा रहे हैं ना, वो सुनने को तैयार है, बहुत दिक्कत है। इसको कहते हैं फ्रिक्शन, घर्षण, ठीक है। तो ये माना गया कि ई कॉमर्स में ये फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, माने कोई बेवकूफ़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। कैसे? ढूंढने की लागत कम हो जाएगी, लोअर सर्च कॉस्ट। दूसरा, डिसइंटरमीडिएशन, माने जो वो है मध्यस्थ, वो कम हो जाएंगे, बहुत सारे मध्यस्थ होते हैं, वो कम हो जाएंगे। फिर प्राइस ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हुआ कि सबको पता लग जाएगा कि किस भाव पर कौन सी चीज़ कहाँ उपलब्ध है। और एलिमिनेशन ऑफ अनफेयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, माने किसी को भी जो क्या कहते हैं अनुचित प्रतिस्पर्धा का लाभ मिल जा रहा था, वो अनुचित लाभ नहीं मिल पाएगा। किसी के पास माल है, वो कह रहे हम तो इतने ही पर देंगे, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, आप इंटरनेट ढूंढिए, पता चल जाएगा कि यही माल कोई और कितने दाम पर दे रहा है। फिर हम लोगों ने एक ये माना कि कोई एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का क्या मतलब हुआ कि जो पहले करेगा उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। ये माना कि जो पहले काम शुरू कर देगा उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन वो भी बात बहुत अच्छी निकली नहीं, अभी आगे और इसको समझते हैं। और फिर एक चीज़ हम लोगों ने देखी, .com crash of 2000, ठीक है, इसको लिख लीजिए, .com crash ही लिख लीजिए, फिर क्रैश को हिंदी में देखते हैं क्या कहा जाएगा, ठीक है, .com crash, ठीक है। ये .com तबाह हो गया, .com क्रैश कर गया, क्रैश का माने विध्वंस, क्रैश, ठीक है। तो क्या हुआ .com क्रैश में, क्या हुआ था कि सन 2000 के क्रिसमस के मौके पर, अमेरिका में, यूरोप में, बहुत सारे देशों में खूब सामान बिकता है। जैसे अपने दिवाली बिकता है, ईद पे बिकता है, वैसे ही वहाँ पर क्रिसमस पे बिकता है। और लोग 15-15 दिन की, महीने भरे भर की, 10-10 दिन की छुट्टियों पे जाते हैं, छुट्टी मौज, क्रिसमस आ गया भाई, ठीक है। तो वहाँ लोगों ने सोचा कि क्रिसमस पर बहुत सारी सेवाएँ और माल सामान हम दे पाएंगे। तो जिसको मनाया कि अरे मेरे पास ये बहुत अच्छा, मैं ये बहुत अच्छा बनाता हूँ, उसने कहा वेबसाइट बनाई लॉन्च कर दिया कि ये हम सामान देंगे। लेकिन सच में क्या हुआ कि जब ऑर्डर्स आ गए तो उतना सामान बना ही नहीं पाए, बना पाए तो दे नहीं पाए, जाए कैसे। तो इसको कहते हैं .com crash। क्या कहते हैं?
.com crash।
ये हुआ .com crash। फिर 2001 से 2006 के बीच में ये कंसोलिडेशन शुरू हुआ। कंसोलिडेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? समेकन कहते हैं, ठीक है। 2001 से 2006 में समेकन हुआ, ठीक है, कंसोलिडेट हो गया, समेकन हुआ। क्या समेकन हुआ? अब अच्छा, जो भी हुआ, अब इसकी चर्चा हम लोग फिर अगले क्लास में करते हैं, ठीक है बच्चों। आज इतना पे रोकते हैं।